लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे पीड़ित बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो बेघर, अनाथ और युद्धों के शिकार हैं, ताकि उन्हें शिक्षा तक पहुंच की गारंटी और पारिवारिक स्नेह का अनुभव करने का अवसर दिया जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। सच्चा गवाह धोखा नहीं देता, किंतु झूठे गवाह की हर बात झूठी है। उपहास करने वाला व्यर्थ ही प्रज्ञा खोजता है, किंतु समझदार व्यक्ति सहज ही ज्ञान प्राप्त करता है। मूर्ख से दूर रहो, तुम उसके मुख से ज्ञान की बातें नहीं सुनोगे। अपने आचरण का ध्यान रखना, यह बुद्धिमान की प्रज्ञा है। दूसरों को धोखा देना, यह मूर्खों की नासमझी है। मूर्ख पाप का प्रायश्चित नहीं करता, किंतु धर्मियों को प्रभु की कृपा प्राप्त है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 14वें अध्याय के 5 से लेकर 9 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस तथ्य के प्रति हमने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराया था कि न्याय का प्रशासन बहुत कुछ गवाहों पर निर्भर होता है, और इसलिए सामान्य भलाई के लिए यह आवश्यक है कि गवाह सच्ची गवाही दे। ईमानदार गवाह असत्य गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। वह किसी को प्रसन्न या अप्रसन्न करने के लिए अपनी बात नहीं रखता, बल्कि न्याय के अनुसार अपना वक्तव्य देता है। इसके विपरीत झूठा गवाह होता है जो पक्षपाती है, जो घूस लेकर गवाह देता है। वह इतनी तत्परता से गवाही देता है जैसे कि उसने जो कुछ कहा है वह सब सच था। ऐसा व्यक्ति न्याय के विरुद्ध बोलता है। फिर उन व्यक्तियों के प्रति भी सूक्ति ग्रंथ का लेखक सावधान करता है जो प्रज्ञा को खोजने का ढोंग रचते हैं। वे ठट्टा करने वाले हैं, जो शिक्षा उन्हें दी जाती है उसकी वे तौहीन करते हैं। एक ओर वे ज्ञान का उपहास करते, तो दूसरी ओर यह दावा करते हैं कि उन्हें ज्ञान की तलाश है। फरीसी भी समय समय पर यीशु मसीह से प्रश्न करते रहे थे, उन्हें प्रलोभित करते रहे थे, उन पर दोषारोपण का बहाना ढूंढते रहे थे, इसलिए कि वे मूर्ख थे जिन्होंने अपनी मूर्खता के कारण अपना, अपने समाज का, अपने समुदाय और अपनी कौम का अहित किया। सत्य को जानने की उनमें इच्छा नहीं थी, बस प्रज्ञा और सत्य का वे उपहास करना चाहते थे। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है कि उपहास करने वाला व्यर्थ ही प्रज्ञा खोजता है। इनके विपरीत समझदार व्यक्ति होते हैं जो प्रज्ञा का सम्मान करते और जो कुछ उन्हें सिखाया जाता है उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। वे समझदार होते हैं और सहज ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। विनम्र होने के कारण उन्हें वांछित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 14वें अध्याय में लेखक मूर्खों से दूर रहने का परामर्श देता है, इसलिए कि उनके मुख से हम ज्ञान की बातें नहीं सुन पाएंगे। मूर्ख लोग सत्य की तलाश को समय गंवाना समझते हैं, और ऐसे लोगों से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। मूर्ख वही है जो बड़े बुजुर्गों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, महात्माओं के प्रवचनों को नहीं सुनते और अपने कार्यों में भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति निरे मूर्ख हैं, जिनसे दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये हमें प्रज्ञा से दूर करते हैं। 14वें अध्याय के 8वें और 9वें पदों में लेखक कहता है, अपने आचरण का ध्यान रखना यह बुद्धिमान की प्रज्ञा है, दूसरों को धोखा देना यह मूर्खों की नासमझी है। मूर्ख पाप का प्रायश्चित नहीं करता, धर्मियों को प्रभु की कृपा प्राप्त है। श्रोताओ, बुद्धिमान व्यक्ति अपने आचरण का ध्यान रखता है, किस समय किसके समक्ष क्या बोलना है यह वह भली प्रकार जानता है, कौन सी चीज जीवन के लिए उपयोगी है और कौन सी चीज हानिकारक इसका उसे ज्ञान है। बुद्धिमान के विपरीत मूर्ख है जो दूसरों को धोखा देने में अपनी बुद्धिमानी समझता है, वह धोखाधड़ी का पाप करता और उसका प्रायश्चित तक नहीं करता है, क्योंकि मूर्ख ना समझ है, जबकि धर्मियों को प्रभु की कृपा प्राप्त है।
वंदे प्रभु, वंदे मसीह।
श्रोताओ, बुद्धिमान और भला व्यक्ति अच्छा आचरण करता है, वह विद्वानों की सुनता, उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, वह अटकलों में शामिल नहीं होता है, उसके पास विवेकपूर्ण ज्ञान होता है जो व्यावहारिक है, जो उसका उपयोग अन्यों को अच्छी सलाह देने और उन्हें भलाई की ओर निर्देशित करने के लिए करता है। बुद्धिमान अपने रास्ते की दिशाओं को समझता है ताकि उनका निरीक्षण कर सके, हर खतरे से बच सके और रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें समझदारी से पार कर सके। इसके विपरीत मूर्खों की मूर्खता छल है, यह उन्हें विनाश के गर्त में ढकेल देती है। उनका घर बालू से बने घर के सदृश है जो समुद्रों की लहरों के आगे टिक नहीं पाता। आगे 14वें अध्याय के 10 से लेकर 12 तक के पदों में लेखक कहता है, हृदय अपनी पीड़ा का मर्म जानता है, उसके आनंद का कोई पराया भागी नहीं होता। दुष्टों का घर ढा दिया जाएगा किंतु धर्मियों का तंबू समृद्ध होगा। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। श्रोताओ, सूक्ति ग्रंथ के उक्त पद कुरिन्थियों को प्रेषित संत पॉल के पहले पत्र के दूसरे अध्याय के 11वें पद से मेल खाते हैं। लिखा है, मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतरात्मा जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरात्मा नहीं जानता। हर मनुष्य उसके अपने बोझ से सबसे अधिक बोझिल रहता है, विशेष रूप से जब आत्मा के बोझ की बात हो। बाहरी बोझ दृश्यमान होता है जबकि आंतरिक बोझ छिपा रहता है और व्यक्ति को पीड़ित करता है। लेखक का परामर्श है कि यदि कोई व्यक्ति हृदय का बोझ ढो रहा हो, यदि वह मौन है, किसी से बात न करना चाहता हो, तो संभवतः उसका मन भारी है, वह किसी आंतरिक बोझ के तले दबा है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के दुख की निंदा न की जाए बल्कि उसके प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन किया जाए। वस्तुतः लेखक ने यहाँ स्पष्ट करना चाहा है कि हृदय की पीड़ा मानव मन की ऐसी पीड़ा है जिसे व्यक्ति विशेष अकेले ही महसूस करता है, पराये का उसमें कोई भाग नहीं होता। आगे कहता है कि दुष्टों का घर ढा दिया जाएगा किंतु धर्मियों का तंबू समृद्ध होगा। श्रोताओ, पाप और बुराई ने कई परिवारों को उजाड़ा है। जो व्यक्ति दुष्ट कर्मों में लिप्त रहते हैं उनका यही हाल होगा, वे कितना भी मजबूत और ऊंचा घर क्यों न बना लें, उनका घर ढा दिया जाएगा। उन्हें अपनी दुष्टता के कारण दरिद्रता और अपमान सहना होगा और अंत में उनका विलोप हो जाएगा, जबकि धर्मियों का तंबू समृद्ध होगा। धर्म परायण व्यक्ति का घर छोटा और सामान्य ही क्यों न हो, वह हमेशा भरा पूरा रहेगा, वहां शांति विराजेगी, वह तूफानों और जल प्रलय के समय भी अडिग रहेगा। धर्मी व्यक्ति ईश भक्त होता है, वह ईश्वर और पड़ोसी से प्यार करता है और इसीलिए उसका उत्थान होगा और उसका तंबू स्थिर रहेगा, क्योंकि वह ईमानदारी और भलाई की ठोस नींव पर निर्मित किया गया है। 14वें अध्याय के 12वें पद में लेखक कहता है, कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। इस पद में मानो बहुत से आत्ममोहित आत्माओं के मार्ग और अंत का लेखा जोखा मिलता है। वे इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि उनका ही मार्ग सही है, वे सही रास्ते पर हैं, वे मन ही मन यह कल्पना कर खुश होते हैं कि जो कुछ वे कर रहे हैं सब उचित है और ईश्वर को सुग्राह्य है। वे इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि वे वैसे ही हैं जैसे उन्हें होना चाहिए, कि उनकी राय, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। ऐसे ही भ्रमित लोगों को लेखक सचेत करता है। अज्ञान और लापरवाही का मार्ग, सांसारिकता का मार्ग, कामुकता और सुख का मार्ग, पाखंड का तरीका, बाहरी प्रदर्शन, आंशिक सुधार और अंधा उत्साह सब गलत है। ये रास्ते उन्हें कभी भी सन्मार्ग पर नहीं ले जा सकते। ये रास्ते सूक्ति ग्रंथ के लेखक के अनुसार मृत्यु की ओर ले जाते हैं। श्रोताओं, तात्पर्य यही कि हम पूर्णतः अपने खुद के फैसलों पर आश्वस्त नहीं रह सकते। जीवन के सही रास्ते को पाने के लिए हमें ईश्वर की कृपा और ईश्वरीय प्रज्ञा की नितांत आवश्यकता रहती है, जो ईश वचन के पाठ, उसके श्रवण और वरण से आती है। सूक्ति ग्रंथ का लेखक उक्त पद में इसी तथ्य को रेखांकित करना चाहता है कि हमारी सुरक्षा और नियति हमेशा वैसी ही नहीं होती जैसी वह प्रतीत होती है। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने अंतर्राष्ट्रीय ईश शास्त्रीय आयोग के सदस्यों से मुलाकात करते हुए उन्हें उनकी प्रेरिताई कार्य हेतु कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। संत पापा ने अपने संबोधन के शुरू में अंतर्राष्ट्रीय ईश शास्त्रीय आयोग के 3 खास मुद्दों के बारे में जिक्र किया। पहला, ख्रिस्तीय विश्वास को फलहित करना, जो नायसिन धर्मसार की 1700वीं सालगिरह को सशक्त बनाती है। दूसरा, दिव्य मुक्ति योजना के संदर्भ में उभरते हुए कुछ मानव शास्त्रीय सवालों की जांच करना, जो मानव परिवार की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा, त्रित्ववादी दृष्टिकोण से सृष्टि के धर्म शास्त्र को गहरा करना, जो गरीबों और पृथ्वी की पुकार को सुनने का आह्वान करती है। संत पापा ने कहा, आप इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए कलिस्से के लिए अपनी सेवा को और प्रगाढ़ और नवीन बनाते हैं। इस ऐतिहासिक क्षण में, जो अपने में कठिन है, यद्यपि हम विश्वास और आशा में इस प्रतिज्ञा को पूरा करने हेतु आगे बढ़ते हैं, जिसे हमने क्रूसित पुनर्जीवित प्रभु के पास्का में पाया है। अंतर्राष्ट्रीय ईश शास्त्रीय आयोग की प्रेरिताई के संबंध में संत पापा ने 3 बातों की ओर ध्यान आकर्षित कराया। संत पापा ने परंपरा के प्रति सृजनात्मक निष्ठा के बारे में कहा कि ईश शास्त्र की प्रेरिताई हमें विश्वास, प्रेम और कठोरता की जगह खुलेपन में अपने कार्यों के निर्वहन हेतु निमंत्रण देती है, जहां हम ईश वचनों को सुनने, धर्म सिद्धांत और उसके आदर्शों का आत्म परीक्षण करते हुए अपनी प्रेरिताई कार्य को पवित्र आत्मा की सहायता में निष्ठापूर्ण ढंग से करने हेतु बुलाए गए हैं। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने परंपरा को परिभाषित करते हुए कहा है, यह एक नदी की भांति है जिसमें असल चीजें सदैव व्याप्त रहती हैं। इस भांति हम सुसमाचार को विश्व के कोने कोने में नए तरीके से प्रसारित करते हैं। संत पापा ने कहा कि परंपरा या तो बढ़ती या मर जाती है, यह भविष्य को सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि परंपरा कलिस्से रूपी पेड़ स्वरूप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। वहीं किसी ने परंपरावाद को जीवितों का मृत विश्वास कहा है। यह तब होता है जब हम अपने को बंद कर लेते हैं। परंपरा हमें आगे ले चलती है, लेकिन हम आज एक बड़े खतरे की स्थिति में हैं, क्योंकि हम अपने को दूसरी दिशा में बढ़ता हुआ पाते हैं। संत पापा ने अपने दिशा निर्देशन के दूसरे बिंदु के बारे में कहा कि सुसमाचार को गहराई तक लेने और उसे वर्तमान परिस्थिति में सारगर्भित बनाने हेतु हमें अपने को दूसरे धर्मों के लिए खोलने की जरूरत है। उन्होंने विशेषज्ञों के प्रति अपने आभार व्यक्त किए जो अपने ज्ञान को साझा करने के माध्यम विभिन्न बहु विषयों को एक दूसरे के निकट लाती और उनकी अच्छी समझ प्रस्तुत करते हैं। तीसरे बिंदु सहचर्य में सहभागिता का जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा कि यह हमें एक सिनोडल कलीसिया के रूप में आगे बढ़ने को मदद करेगा, जहां ईश प्रजा एक साथ एकत्रित होती है। ईश शास्त्री का बुलावा समुदाय के निर्माण हेतु हुआ है। हर एक ईश शास्त्री इस भांति अपने में सुनने, वार्ता करने, आत्म परख करते हुए विभिन्न बातों में सामंजस्य स्थापित करने को बुलाया गया है। उधर रोम में एकत्रित यूनियन सुपीरियर्स जनरल को संबोधित करते हुए राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संघ संबंधों के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष पॉल गलाघार ने कहा कि हर कीमत पर वार्ता ही स्थायी शांति का एकमात्र साधन है। रोम के पास सैक्रोफानो के फेटरान डोमास में होने वाली यूनियन ऑफ सुपीरियर्स जनरल की 98वीं सभा का उद्घाटन करते हुए महाधर्माध्यक्ष पॉल गलाघेर ने कहा कि नई पीढ़ियों के लिए सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देकर युद्ध को रोका जा सकता है। यह सम्मेलन दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित कर रही है, विशेष रूप से यूएसजी और यूआईएसजी शांति, न्याय की स्थापना और सृष्टि की अखंडता के लिए प्रतिबद्धता पर जोर दे रही है, जहां समर्पित नर और नारियों को प्रशिक्षण के माध्यम तैयार किया जाएगा। उधर वर्जीनिया के एक सुपरमार्केट में एक बंदूकधारी द्वारा की गई गोलाबारी में कम से कम 6 लोगों की मृत्यु हो गई। विदित हो कि अमेरिका में हथियार गोलाबारी का एक लंबा इतिहास है। इस कड़ी में विगत सप्ताह पहले ही एक बंदूकधारी ने कोलोराडो के एक LGBTQ नाइट क्लब में अंधाधुन गोलीबारी की, जिसमें 5 लोग मारे गए जबकि करीबन 20 लोग घायल हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्माध्यक्षों ने अमेरिका में बंदूक कानूनों की आलोचना की है, जो अमेरिका वासियों को हथियार रखने का अधिकार प्रदान करता है। कार्डिनल ब्लेज क्यूपिच शिकागो के धर्माध्यक्ष ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्र के संविधान में निहित हथियारों का अधिकार कभी भी मानव जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा है कि यह राजनीतिक नेताओं का अधिकार और कर्तव्य है कि वे जन सामान्य के जीवन की रक्षा करें। संत पापा ने भी इस संबंध में हथियारों की अंधाधुन तस्करी को समाप्त करने का आह्वान किया है। संत पापा ने 25 मई 2022 को अपने आम दर्शन समारोह में इस बात की अपील की। उधर बुधवार को यरूशलेम में हुए 2 आतंकी बम विस्फोट में एक युवक के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों घायल हो गए। इस विस्फोट में मारे गए किशोर की पहचान इसराइल कनाडाई धार्मिक छात्र के रूप में की गई है। उधर ब्रिटेन में कलीसिया और इसके परोपकारी संस्थानों ने मिलकर गर्म जोशी से स्वागत योजना की शुरुआत करते हुए उन लोगों की ओर अपनी सहायता के हाथों को बढ़ाया है जो अपने रहने के गर्म स्थानों और बिलों के भुगतान में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। गर्म जोशी से स्वागत परियोजना एकतावर्धक संस्थानों कलीसिया कार्यरत से शुरू की गई है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।